नेक्स्ट श्लोक आप लोग, दिक्कत तो नहीं है ना, चल रही ना क्लास, 7:30 तक करेंगे हम लोग। वक्तुम अर्हस्य शेषेणा दिव्या ही आत्म विभूतयः या भीर विभूति भीर लोकान त्वाम इमाम स्त्वं व्यापतिष्ठसि। अब आप देखिए कि भक्त का कितना ईगरनेस है। जैसे आप किसी को सर्व कीजिए प्रसाद और जब भूखा होता है कहता आ हा हा बहुत अच्छा लग रहा है, और लाइए ये आइटम, और लाइए वो आइटम, और लाइए, तो आपको भी सर्विंग करने में अच्छा लगता है ना। और आप किसी को एक रोटी दें, आधा रोटी दें, बेचारे का प्रॉब्लम है पेट का और नहीं चाहिए, तो आपका उत्साह भी कम हो जाता है ना। जब बक लोग जम के खाते हैं तो हमारा भी उत्साह होता है सर्विंग करने का। तो भगवान सर्विंग कर रहे हैं अपनी कीर्ति को, अपने गुणगान को। तो आप देख सकते हैं अर्जुन की भूख कितनी ज्यादा है, तो आप जरा देखिएगा, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। पहली चीज आप देखिए, अर्जुन कहां पे खड़े हैं, होटल में, जंगल में कि महल में? नाना दबाव कहां पे हैं अर्जुन? युद्ध स्थल में है। और बिगुल बज चुका है कि बजने वाला है? बच चुका है, मतलब युद्ध चालू हो चुका है। और आप इनकी तत्परता देख रहे हैं सुनने का, युद्ध की कोई टेंशन नहीं है, आप सुनाइए आराम से कथा सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं, युद्ध होता रहेगा, है ना। आप देख रहे हैं ना स्पष्ट, विस्तार पूर्वक सुनाइए अपने महिमा को। तो आपने क्या देखा, अर्जुन की ईगरनेस, भगवान के बारे में सुनने की, जानने के आग्रह जो है, उससे भगवान की कृपा आकर्षित होती है। जैसे आप लोग पढ़ सकेंगे चैतन्य चरितामृत में, एक बार प्रद्युम्न मिश्र नाम के भक्त थे और वो महाप्रभु के पास आते हैं और कहते हैं आप मुझे हरि कथा सुनाइए। तो कहते हैं मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, आप रामानंद राय के पास जाइए। लेकिन उससे पहले कहते हैं हरि कथा सुनने की इच्छा आपके हृदय में आ गई है, आप बहुत भाग्यवान हो। मैंने समझाया था ना कि हमारे भक्तों के कान कैसे होते हैं, जीभ की तरह, जैसे जीभ से हम रसगुल्ला चखते हैं ऐसे भक्तों के कान हरि कथा हरि नाम का आस्वादन करते हैं। तो अभी आप आगे अगर हम लोग आज पढ़ पाएंगे तो हम आज तो नहीं, आगे जाके श्लोकों में आएगा, अर्जुन कहते हैं मुझे तृप्ति नहीं हो रही, मुझे तृप्ति नहीं हो रही, आप और सुनाइए। और एक कारण ये भी है कि जब वो भगवान की महिमा को सुनेंगे तो भगवान के प्रति जो प्रीति है वो और बढ़ जाती है। जब हम किसी की महिमा सुनते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, तो अगर उनकी महिमा सुनते हैं कि कितने अच्छी भक्ति कर रहे हैं, कैसे प्रचार कर रहे हैं, तो हमारा उनके प्रति प्रेम बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता। तो इसी प्रकार से इसका विपरीत देख लीजिए, किसी को आप घृणा करते हैं और उसके बुरे निंदित कार्यों को जितना अधिक सुनते हैं उतनी ही घृणा और द्वेष बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, नेचुरल। तो इसी तरह से भगवान के बारे में बहुत सुनने का अर्जुन का आग्रह है और भगवान को बताएंगे। तात्पर्य आप पढ़ना चाहेंगे, हिंदी पढ़ सकते, यस, प्रभु जी को एक माइक अलग सीख देना चाहिए ना? ओके, यस।
कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं।
तात्पर्य मैं, चलिए मैं पढ़ता हूं तात्पर्य को। इस श्लोक में ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों में से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब कुछ प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है, उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं, अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन समान लोगों के हित के लिए ही पूछ रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि फैन कम कर सकते हैं, ओके गुड, एक फैन ऑन कर सकते हैं, सेंटर वाला यस। हाँ, तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, हाँ, एक हम लोग भगवद्गीता के उक्ति सुनते हैं, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। जैसे गाय दूध दब देती है जब उसका बछड़ा पास में आता है, तो अर्जुन है पास में और इस कारण से भगवान उनके उनसे प्रेम करते हैं, तो गुह्य रहस्य अपने बारे में बता रहे हैं। तो अर्जुन भी आस्वादन कर रहे हैं, जैसे बछड़ा भी दूध पीता है और बाकी दूध जो है दूसरे थनों में जो होता है वो अन्य लोग पीते हैं, ऐसे ही अन्य साधुजन इस चीज को स्वीकार करते हैं। ठीक है, एक श्लोक हम और देख रहे हैं, यू कैन जस्ट मिक्स इट, नो प्रॉब्लम। कथम विद्यामहं योगिन्स त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोसि भगवन्मया। एक बार और बोलेंगे, कथं विद्यामहं योगिन्स त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। भक्त की एक ही चिंता होती है कि भगवान का चिंतन वो कैसे कर सके, यही चिंता होती है कि नहीं? और भगवान भी यही कह रहे हैं कि केवल यही चिंता करो और तुम्हारी बाकी सारी चिंता मैं देख लूंगा। कुछ श्लोक याद आ रहा है आपको, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भक्तों को धन की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सही बता रहे हैं, इससे बहुत बड़ा नुकसान है बुद्धि का। आज एक भक्त मुझे पूछ रहे थे कि उनको कोई बोल रहा था कि आप इसके फलाने कंपनी के एजेंट बन जाइए तो और धन प्राप्त हो जाएगा ये वो। तो ये भक्त की चिंता नहीं होनी चाहिए, भक्त की चिंता होनी चाहिए कैसे वो कृष्ण का चिंतन अधिक से अधिक कर सकेगा। हे कृष्ण, हे परम योगी, भगवान को योगी क्यों बोल रहे हैं? क्या भगवान अष्टांग योग करते हैं? कौन सा योग करते हैं भगवान? अनुलोम विलोम प्राणायाम कपाल भाति, तो योगी क्यों बोल रहे हैं? लेट्स सी हु नोज आंसर। योगेश्वर तो है, इसका अर्थ क्या है? योगेश्वर का अर्थ क्या समझते हैं? भक्ति योग के ईश्वर, मास्टर ऑफ ऑल योगा। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ होता है वो शक्ति जिसके द्वारा असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। तो भगवान योगेश्वर हैं, अर्थात उनके पास वो सारी शक्तियां हैं जिससे कुछ भी असंभव आप सोचोगे वो हो सकता है। इसलिए यहां पे बोल रहे हैं परम योगी, इसलिए नहीं कि वो अष्टांग योग करते हैं। मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तात्पर्य, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लाइन है, ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, भगवान सच्चिदानंद हैं, रसमय हैं, लेकिन लोग अनुभव नहीं करते। क्यों? कवर कर लेते भगवान। आप देखिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के खेमे में गए थे, तो वहां भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना ब्रह्म तेज प्रकाशित किया, क्योंकि वो लोग ब्रह्म तेज के प्रति बड़े आकर्षित होते हैं। अन्यथा भगवान उसको संवरण करके रखते हैं, संवरण मतलब कंसील करके रखते, छुपा के रखते हैं। तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, भगवान उस योग माया के आवरण को हटा देते हैं। जैसे आप लोग सुनते हैं, हम सब लोग सुनते हैं, अध्यावधि लीला करे गौर राय, कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। इस समय भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं चल रही हैं, लेकिन जो भाग्यवान व्यक्ति है वो देख सकता है। जैसे मैं थोड़ा गलत हो सकता हूं, दोनों में से कोई एक थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी या रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, दोनों में से कोई एक के संग ऐसा हुआ था। महाप्रभु गए साउथ इंडिया में, वो सोच रहे थे कि महाप्रभु की जो संकीर्तन लीला है वो मैं देख नहीं पाया। किसके संग हुआ था? रघुनाथ दास गोस्वामी, भट्ट गोस्वामी, खैर किसी गोस्वामी के संग हुआ था। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तो बनारस में थे जहां था। तो दास गोस्वामी के साथ ही हुआ है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो भगवान ने उनको पूरा विजन दिया, सारी लीलाएं उन्होंने देखी, सपने में नहीं देखी, पूरा साक्षात विजन की तरह दिया। तो अभी देख सकते हो कि भगवान अपनी योग माया के द्वारा अपने महिमा को, अपने गुणों को छुपा के रखते हैं, तो वो केवल भक्तों को ही रिवील करते हैं, केवल शरणागत भक्त जन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सकें। मित्र कृष्ण भगवान हैं, ये तो उनको नौ अध्याय तक सुन करके समझ में आ गया था, मतलब अभी तक तो भगवान को मित्र के रूप में देख रहे हैं, और भगवद गीता सुनने के बाद वो कैसे देखेंगे, मित्र के रूप में ही देखेंगे। थोड़ी देर के लिए भगवान के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि भगवद गीता सुनने के बाद भी रथ ही हकवाएंगे, समझ रहे हैं, मित्र के रूप में ही देखेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान, अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है कि भगवान योग माया के प्रभाव से अपनी भगवत्ता अपने मधुर भक्तों के हृदय से कवर कर लेते हैं, तभी वो अपने उनसे एक मित्र के रूप में या एक व्यक्ति के रूप में डील कर सकते हैं। इसको उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए आपके पिताजी प्राइम मिनिस्टर हैं, मान लीजिए ये चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो आपसे चीफ मिनिस्टर की तरह बर्ताव नहीं करते, ये तो समझ में आ रहा है ना, वो चीफ मिनिस्टर घर में भी रहते हैं लेकिन आपसे बर्ताव चीफ मिनिस्टर की तरह नहीं करेंगे। और अगर आप आओ, मान लो घर वापस आए, कहें मिस्टर चीफ मिनिस्टर मेरा प्रणाम स्वीकार करें, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? आप समझ सकते हो उनको नहीं अच्छा लगेगा। तो जो आत्मीयता है भगवान कृष्ण, वो खुद भी चाहते हैं भक्तों से इस प्रकार की आत्मीयता, तो ये वो इसी कारण से योग माया के प्रभाव से ढकते हैं। लेकिन जो कर्मी लोग हैं या भक्त हैं, उनके लिए क्या है, भगवत्ता भी लोभ और मित्रता भी लोभ, ना मित्रता की समझ में आता है, ना संबंध समझ में आता है, और ना ही समझ में आता है कि कृष्ण भगवान। आप अंतर समझ रहे हैं, योग माया के प्रभाव से भक्त लोग भगवान को, भगवान तो भूल जाते हैं लेकिन संबंध नहीं भूलते, भगवान को नहीं भूलते, और सामान्य लोग भगवान को भी भूलते हैं, अपने संबंध को भी भूल जाते हैं। ये योग माया का प्रभाव है, महामाया का प्रभाव है। ओके, असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। सिंपल शब्दों में कहें तो अर्जुन ये जान रहे हैं कि वो तो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सामान्य जनता स्वीकार नहीं करेगी। तो इस कारण से बता रहे हैं कि आप कृपया अपनी महत्ता को, भगवत्ता को समझाइए, ताकि सामान्य लोग भी समझ करके आपका शरण ले सकें। ओके, कुछ समझ में आ रहा है। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे समान जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्या चीनी से आप मिठास को निकाल सकते हो? प्रायः संभव है। नमक से नमकीनता को निकाल सकते हैं? तो ये संभव है। ले उसी प्रकार से कृष्ण से क्या आप आनंद को हटा सकते हैं? लेकिन कृष्ण अपनी योग माया के प्रभाव से हटा देते हैं, या एटलीस्ट प्रकट नहीं होने देते। इसीलिए यहां पे योगी बोला जा रहा है। आपको याद है ना, मैंने बोला था योग मतलब वो कार्य करने की शक्ति जो असंभव है। तो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान जहां भी हैं वो आनंदमय होते हैं, अपनी ही शक्ति से भगवान ढक लेते हैं जो कि संभव नहीं है अन्यथा। जैसे शिशुपाल और जरासंध जब भगवान कृष्ण को देखते थे तो क्या उनको अष्ट सात्विक विकार होते थे? नहीं होता था, बहुत गुस्सा आता था। शिशुपाल तो हमेशा ये सोचता था कि मेरी पत्नी को लेकर चला गया, जबकि शादी नहीं हुई थी रुक्मणी से, लेकिन जिंदगी भर ही सोचता रहा कि उन्हें पत्नी का अपहरण कर लिया उसने। तो अभी देख सकते हैं कि भगवान को देख के उन्हें कोई सुख क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान के भक्त नहीं है, इसलिए भगवान योग माया से अपने माधुर्य को छुपा लेते हैं। ठीक है। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है, अर्थात भौतिक वस्तुओं का चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। क्योंकि भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने के प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। श्री प्रभुपाद जी संबंध में एक व्यक्ति को बोलते थे जो शराब पीता था, कहा कि उन्हें कि आप ये देखो कि ये शराब भी कृष्ण से आ रही है, क्योंकि अंगूर कहां से आ रहे हैं, पेड़ से आ रहा है, तो पेड़ किस पे आधारित है, प्रकृति के ऊपर, तो अंगूर से आपकी शराब आ रही है, तो जितनी बार आप शराब पिए तो ये स्मरण करें कि ये कृष्ण से आ रहा है। कहने का अर्थ ये है सबसे ज्यादा अभाव इस जगत में है तो वो है कृष्ण के स्मरण का, स्वीकार करते हैं ना, बाकी किसी चीज का अभाव नहीं है। तो भक्त लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि सामान्य लोगों का चित्त कैसे भगवान में लगेगा, ये हमारे लिए भी कठिन होता है, लेकिन सोचते रहते हैं कैसे लोगों को कृष्ण की तरफ उन्मुख किया जाए। तो यही अर्जुन का प्रश्न पूछने का कारण है जिसके लिए वो प्रश्न कर रहे हैं कि सामान्य लोग कैसे भगवान का स्मरण करेंगे, ना तो वो स्मरण करते हैं और ना करना चाहते हैं, समझ रहे हैं, ना तो लोग स्मरण कर रहे हैं कृष्ण का और ना वो करना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि लोग इस जगत की वस्तुओं को देख के आपका स्मरण कैसे कर सकते हैं। मेरी इच्छा हो रही है कि एक श्लोक को हम और चर्चा कर लें, फिर अगली बार से भगवान जो बोलेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। स्टॉप दिस एंड नेक्स्ट पार्ट।